माधव और सुमन के बीच हुई उस बहस को कुछ दिन बीत गए थे और उस रात के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। सुमन चिढ़ी हुई सी रहती, उसका गुस्सा बाकी सब पर निकालती। अनुपमा जी की जरा इज्जत नहीं करती थी वो, जबकि वो उसे पलकों पर बिठाती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी, खाने पीने में उसकी फरमाइशें तक पूरी करती थी और माधव को भी उसे कुछ कहने से रोक लेती थी। माधव की तीनों बहनों से तो इस कदर चिढ़ती थी कि उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। शायद उसे लग रहा था कि इन लोगों के कारण माधव पूरी तरह से उसका नहीं हो पा रहा था और वो अपने पति को इन सबके साथ बांटना नहीं चाहती थी। उसकी चिढ़, गुस्सा, नाराज़गी सबकी वजह जानता था माधव। अपने स्तर पर उसे समझाने और मनाने की कोशिश भी करता था, पर सुमन तो ज़िद पर अड़ी थी और जब माधव उसकी बात नहीं मानता तो दोनों के बीच बहस हो जाती थी, जिसके वजह से सिर्फ उनका रिश्ता ही नहीं, घर का माहौल भी बिगड़ रहा था। शाम का वक्त था। बीते दो दिनों से अनुपमा जी की तबीयत खराब चल रही थी, ठंड लग गई थी उन्हें। माधव आज जब घर आया तो कविता घर से गायब थी। निशा ट्यूशन के बच्चों में उलझी थी और शिखा बेचारी आटा गूंध रही थी और उसकी बीमार माँ किचन में रसोई में खड़ी सुमन की पसंद का मसाला पनीर और कोफ्ते बनाने में जुटी थी। ये देखकर माधव की त्योरियाँ चढ़ गईं और चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए। यही नाटक था सुमन का। शादी को 3 महीने होने वाले थे पर अब तक सुमन ने रसोई में कदम नहीं रखा था। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी वो और खाने पीने में इतने नखरे जैसे कहीं की शहजादी हो। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती थी वो, बस बैठकर खाती थी और बेवजह सब पर गुस्सा उतारती थी। अब तक अनुपमा जी के कारण माधव चुप था, पर आज पानी उसके सर के ऊपर से गुजर गया था और उसने फैसला कर लिया था कि आज इस बारे में सुमन से बात करके ही रहेगा। नाराज़गी से भरा माधव जब कमरे में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसका माथा ठनक गया और गुस्से में उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि सुमन भी कांप उठी। उसने चौंकते हुए निगाहें उसकी ओर उठाईं, पर जैसे ही नज़र माधव के चेहरे पर पड़ी, अजीब सा मुंह बनाते हुए उसने अपनी निगाहें उस पर से फेर लीं और बेड पर पैर पसारे बैठे स्नैक्स खाते हुए मज़े से फ़ोन चलाने लगी। उसका ये व्यवहार देखकर माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेज कदमों से चलते हुए वो सुमन के पास आया और उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। पहले तो सुमन चौंक गई, अगले ही पल गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए चिल्लाई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीनने की? अभी और इसी वक्त मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। नीचे मम्मी किचन के कामों में लगी है, 2 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह बिस्तर से उठने की भी हालत नहीं थी उनकी और अभी वो किचन में खड़ी आपकी पसंद का खाना बना रही हैं और आप उनकी मदद करवाने की जगह यहाँ बैठकर फ़ोन चला रही हैं। माधव भी बराबर गुस्से से उस पर चिल्लाया। इतने वक्त में पहली बार माधव ने उससे इस लहजे में बात की थी। सुमन कुछ हैरान भी हुई। अगले ही पल उसने मुँह ऐंठते हुए बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो या खराब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने उन्हें मेरे लिए कुछ बनाने कहा था। उन्हें खुद बीमारी में भी परेशान होने का शौक चढ़ा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सुमन, आप भी इसी घर में रहती हैं, क्या इस घर परिवार के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? घर में बहू के होते हुए मम्मी सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती हैं पर आप किसी एक काम को भी हाथ नहीं लगाती। सुबह तो हम समझते हैं कि आपको ऑफिस जाना होता है तो वक्त नहीं मिलता, पर ऑफिस से लौटने के बाद तो आप उनकी मदद कर सकती हैं और आज तो आपकी छुट्टी भी थी, फिर भी नीचे जाकर मम्मी के काम में मदद करवाने की जगह आप यहाँ आराम से बैठकर फ़ोन चला रही हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों का 1% भी एहसास नहीं? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मेरी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते कुछ फ़र्ज़ आपके भी बनते हैं? ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगता मैं आपसे, बस इतना कहता हूँ कि मेरी मम्मी की इज्जत करें, मेरी बहनों के साथ प्यार से पेश आएं और जितना मुमकिन हो घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां ही संभाल लें। आपके होते हुए इतनी बीमारी में भी मम्मी घर का काम कर रही हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं, क्या ये अच्छा लगता है? आपको खुद को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि आप बस बैठकर खाती हैं और सब पर अपना हुक्म चलाती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी माँ और बहनों से कोई मतलब नहीं। मैंने शादी सिर्फ तुमसे की है, तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात ये कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, पर तुम यहाँ से जाने को तैयार नहीं, इसलिए मेरे वजह से तुम्हारी माँ और बहनों को जो भी परेशानी हो रही है उसकी वजह तुम हो, उसके जिम्मेदार भी तुम हो, मैं नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहने चलो, फिर तुम्हारी फैमिली यहाँ आराम से रहेगी। तीसरी और सबसे अहम बात कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की सेवा में लगी रहूँ। जब मैं नहीं थी तब भी तुम्हारे घर में सब काम होते ही थे, तो अब मैं आ गई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुफ्त की नौकरानी बनकर सब काम करने लगूं। फिर इस घर में सिर्फ मैं तो नहीं रहती, तुम्हारी 3 बहनें भी रहती हैं, उनसे क्यों नहीं कहती कि अपनी बीमार माँ की मदद करें? तुम्हारी बड़ी बहन भी तो इसी घर में रहती है पर किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, सारा सारा दिन खाली बैठे या तो फ़ोन चलाती रहती है, अपने मंगेतर से बात करती रहती है और ये भी कम पड़े तो बाहर घूमने निकल जाती है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, वहाँ से थक कर आती हूँ और तुम चाहते हो कि उसके बाद मैं घर पर आकर काम भी करूं। हफ्ते में जो एक छुट्टी मिलती है उसे भी तुम्हारे घर के कामों में बर्बाद कर दूं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। मैंने कभी अपने घर में भी किसी काम को हाथ नहीं लगाया, तो तुम मुझसे ऐसी उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा होगा। हाँ, अगर हम अलग हो जाते हैं तब जरूर मैं तुम्हारा और अपना काम कर लिया करूंगी। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही चिंता है, उनके काम करने से इतनी ही परेशानी है, तो मुझे कहने की जगह अपनी बहनों को कहो कि अपनी माँ का हाथ बटाएं, खुद जाकर उनकी मदद करो। और ये भी नहीं होता तो एक नौकर रख लो, सारी परेशानी ही सॉल्व हो जाएगी। बस आइंदा मुझसे काम करने ना कहना। और अब फोन वापस करो मेरा, इतनी अच्छी मूवी देख रही थी मैं, खुद तो मुझे कहीं बाहर लेकर जाते नहीं और फोन में देख रही थी तो यहां भी डिस्टर्ब करने चले आए। सुमन ने चिढ़ते हुए अजीब सा मुंह बना लिया। माधव उसकी बातें सुनकर शॉक था। दिल ने एक बार फिर सवाल किया कि क्या ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी उसने? क्या इसीलिए अपने मन के विरुद्ध जाकर शादी की थी? सुमन उसकी पसंद तो नहीं थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। समझ रहा था वो कि सब कुछ वो सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए कर रही है। माधव के चेहरे पर दुख और निराशा जैसे भाव उभर आए। मन गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में उसके हाथ में फोन पटका और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आया तो तीनों उसे ही देख रहे थे। माधव उन्हें नजरअंदाज करते हुए किचन में घुस गया और हाथ धोकर खुद काम में लग गया। अनुपमा जी ने निशा और शिखा को आंखों से शांत रहने का इशारा किया और खुद माधव के पीछे पीछे रसोई में चली आईं। माधव बेटा, हमारे लिए क्यों बहू से लड़ाई करते हो? अपना उनसे रिश्ता खराब करते हो? हम तो चार दिन के मेहमान हैं, जिंदगी आपको उनके साथ ही बितानी है। उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। माधव जो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, अनुपमा जी की बातें सुनकर उसकी बाहों और माथे की नसें उभर आईं।
वो खुश होंगी अगर मैं उनकी ये जिद भी पूरी कर दूं? आपकी प्यारी बहू चाहती है कि मैं आप सबको छोड़कर उनके साथ उनके अपार्टमेंट में जाकर रहूं, और मैं उनकी ये बात नहीं मान रहा, इसलिए इतना हंगामा मचाया हुआ है उन्होंने। अब आप बताइए, उनके लिए आप सबको छोड़ जाऊं, मोड़ लूं अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारियों से मुंह, कहीं ये कर लूं यही? माधव इस बार सच में फ्रस्ट्रेट हो गया था और गुस्सा व चिढ़ उसके व्यवहार में झलक रहा था। निशा और शिखा दोनों लाचारगी से अपने भाई को देख रही थीं और अनुपमा जी भी कुछ परेशान हो गई थीं। माधव का गुस्सा देखते हुए वो प्यार से उसे समझाने लगीं। माधव, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी हर जायज़ नाजायज़ हित पूरी करें। हम बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से आप दोनों का रिश्ता खराब होगा, दूरियां बढ़ेंगी। अगर हमारे लिए आप उनसे लड़ेंगे तो उनके मन में हमारे लिए नाराज़गी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगी और रिश्ता बिगड़ जाएगा। वो अभी बच्ची है, नादान है, रिश्तों की इतनी समझ नहीं उनमें, पर आप तो समझदार हैं। अगर वो कुछ गलत बोलती हैं तो प्यार से उन्हें समझाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो भी आपके लिए उतनी ही अहम है जितने हम। उन्हें बाहर लेकर जाइए, घुमाइए फिराइए, एहसास करवाइए कि वो भी इस परिवार का हिस्सा है। उनसे प्यार से पेश आइए, धीरे धीरे वो आपको समझने लगेंगी और सब ठीक हो जाएगा। उनके इन बातों के जवाब में माधव कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर चुप ही रह गया। डिनर के वक्त सुमन नीचे उतरी और अपना खाना लेकर वापस ऊपर चली गई। खाकर बर्तन भी बेड के पास ही छोड़ दिए और सो गई। माधव उसके इस तरह के व्यवहार से तंग आ चुका था, उसका सब्र खत्म होने लगा था, पर फिर भी वो चुप ही रहा। बर्तन लेकर नीचे चला गया और देर रात गए वापस रूम में लौटा। एक नज़र सुमन को देखा, जिसके साथ ये रिश्ता निभाना अब उसके लिए नामुमकिन होने लगा था। आखिर कोई इंसान अकेले कितने समझौते करे, कितना बर्दाश्त करे? सुमन तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं थी। उसकी तरफ से इस रिश्ते को निभाने में कोई एफर्ट्स ही नहीं थे, फिर भला आखिर कब तक माधव अकेले इस रिश्ते के बोझ को ढोर सकेगा? वो तो सिर्फ तब तक खुश रहती थी जब तक माधव उसके मन की करता रहता था। ऐसा कब तक चल सकता था? अब तो माधव भी ज़हनी तौर पर थकने लगा था। टू बी कंटिन्यूड। कौन सही और कौन गलत, ज़रा बताइए तो सही।